मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 27 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार को नियमित तौर पर मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, और सूचनाएं यह कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो शनिवार को आपको एज इट इज़ मिलेंगी, और साथ ही साथ शनिवार को आप लोगों को हम लोग पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, और जिसका संबंध योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन से है। आपको योजना के 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश में, और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के आपको 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इसके साथ ही साथ एक वीकली क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, साप्ताहिक प्रश्न जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ताकि धीरे धीरे आप अभ्यास कर सकें, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसके बारे में कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, एक तथ्य मुझे लगता है कि स्पष्ट कर देना चाहिए, और वह यह कि अभी मैं जो आपसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में बातें कर रहा हूं, मेरे दिमाग में मई लास्ट डे पर होने वाला जो आपका एग्जाम है वो बहुत स्पष्ट रूप से है। इनकी बातें बहुत विस्तार से की जा सकती हैं, बहुत विस्तार से इन्हें समझाया जा सकता है, बहुत रोचक तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन मुझे अपने आप को थोड़ा सा सीमित इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं कवर कर सकूंगा शायद आपको उतना अधिक लाभ मिल सकेगा, और मैं टॉपिक का जो सिलेक्शन भी कर रहा हूं वो इस दृष्टि से कर रहा हूं कि जो शायद अभी के प्री एग्जामिनेशन में आपकी कुछ मदद कर सके। यानी कि मैं जो बातें आपसे अभी कर रहा हूं, हालांकि ये सब बातें सीरीज में हो रही हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि एग्जैक्ट सीरीज में ही हो रही हैं, बीच के कुछ हिस्सों को जानबूझकर मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मैं छोड़ रहा हूं इसलिए ताकि मैं उसकी तुलना में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको बता सकूं, और साथ ही साथ यदि मैं किसी टॉपिक पर भी आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट है कि इनमें से कौन सी वे बातें हैं जो प्री एग्जामिनेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए आप थोड़ा सा जो मेरे ये लेक्चर्स हैं उन्हें मार्जिन देकर चलें, राइट। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 पर। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग हर साल किसी न किसी एक अधिनियम पर एकाध प्रश्न पूछ लिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के, और खासकर गैसों के उत्सर्जन को लेकर के। दूसरी तरह की सुरक्षाओं की दृष्टि से हमारे यहाँ बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही कानून बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने ये देखा है कि उनमें से किसी एक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादा नहीं पूछे जाते, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन एक बड़ी बात यह होती है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखने में तो बड़े जटिल लगते हैं। जब आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे, आपको कितना याद करना पड़ेगा, इसको कैसे आप याद करेंगे, ये तो बहुत ही छकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि आप एक्ट के केंद्र को जानते हैं, एक्ट के मूलभूत चरित्र को जानते हैं, तो फिर यूपीएससी आपको छका नहीं पाएगा। देखिए, उसका पर्पज यह है भी नहीं कि वो आपको परेशान करे, उसका पर्पज यही है कि आपको सीधा रास्ता न दे करके वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दे, ताकि वो जान सके कि आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल करके सही जगह पर पहुंचना आता है या नहीं। तो अगर आप कोई भी एक्ट, चाहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बहुत सारे एक्ट हैं, सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से तैयार करना है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसके मूल चरित्र को पकड़ें, मूल चरित्र को। तो आइए हम यही कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा जो जैव विविधता अधिनियम है तो बहुत स्पष्ट है कि इसका जो संबंध है, हमारे यहां जो बायोडायवर्सिटी है, उस बायोडायवर्सिटी को किस तरीके से हम संरक्षित करें इस पर आधारित है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण को। एक बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि पहला सम्मेलन जैव विविधता को लेकर के 1992 में रियो द जनेरियो में हुआ था। रियो द जनेरियो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इसके बारे में आपको इंडिपेंडेंटली तैयारी करना चाहिए। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, रियो द जनेरियो 1992 में। इसमें बकायदे जैव विविधता पर बात हुई और उसमें साइन करने वालों में भारत भी था, भारत भी उस सम्मेलन में था, उसने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जब 1992 में उसने हस्ताक्षर कर दिए तो अब उसके लिए जरूरी हो गया कि अपने यहां जैव विविधता के संरक्षण के लिए वो कुछ उपाय करे। तो ठीक है, दूसरे उपाय आप करते रहते हैं, लेकिन सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो कोई एक्ट लेकर के आए, क्योंकि एक्ट पारित होते ही, एक्ट बनते ही उसके हाथ में एक तरह से वैधानिक शक्तियां आ जाती हैं। तो उसी के तहत भारत सरकार ने 2002 में यह जैव विविधता अधिनियम पारित किया, राइट। अब यह बहुत सिंपल सी बात है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। हम उद्देश्यों को देखेंगे, समय रहा तो हम फिर उसके जो डिटेल्स प्रावधान हैं उनको देखेंगे, लेकिन उद्देश्यों को जानना बहुत जरूरी है और थोड़ी गंभीरता से जानना जरूरी है। देखिए, पहला उद्देश्य है कि हमारे देश के जो जैव संसाधन हैं, है ना, सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई भी हो, हमारे संसाधन, चाहे वो इकोसिस्टम ही क्यों ना हो, उनका जो उपयोग किया जाता है उसको रेगुलेट करे, नियमित करे। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि जंगल, तो ठीक है, जंगल से हमें लकड़ियां मिल रही हैं, जंगल से हमें उत्पाद मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर लेंगे जो जंगल, और दूसरे जो उत्पाद हैं उनका कुछ भी शोषण करते रहेंगे ताकि जंगल बर्बाद हो जाएं, वहां उसमें रहने वाले जीव जंतु बर्बाद हो जाएं, नदियां हैं, समुद्र हैं, उनमें आप गंदगी डालते रहें ताकि कूड़ा कचरा, हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो साफ सुथरे रह सके, उनका कूड़ा कचरा वहां जाता रहे। इस तरह से तो आप अलाउ नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये जो हमारे संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, इनका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। और जब हम सही तरीके से उपयोग की बात करते हैं तो आज के संदर्भ में आप यूं कह लीजिए कि हम धारणीय उपयोग की बात कर रहे हैं, संपोषणीय उपयोग की बात कर रहे हैं। तो यहां इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे यहां जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें ताकि वो लंबे समय तक चल सके, पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके। ये सबसे प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ऐसी प्रजातियां जिन पर संकट मंडरा रहा है, बकायदे उनका संरक्षण किया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए। देखिए, पुनर्वास और संरक्षण में थोड़ा सा फर्क है। संरक्षण तो यह है कि वो जहां रह रहे हैं आप वहीं उनको संरक्षित कर दे रहे हैं। पुनर्वास का मतलब यह है कि वहां उनके रहने की स्थितियां नहीं बन रही हैं तो आप उन्हें वहां से हटा करके किसी दूसरी जगह पर रख रहे हैं। और हालांकि पुनर्वास का भी जो उद्देश्य है वो संरक्षण करना ही है, तो पुनर्वास को आप संरक्षण करने का एक तरीका मान सकते हैं, एक विकल्प मान सकते हैं। तो जो संकटापन्न जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए। दूसरा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक साल के प्री एग्जामिनेशन में, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, ये पूछा भी गया है। और मैंने देखा कि जब स्टूडेंट्स इसके बारे में बात की तो वो भ्रमित हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं नहीं अब एक्ट में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन वो है, उद्देश्य के तहत है, और बकायदे एक्ट में प्रावधान भी है इसके लिए। देखिए, ये क्या है कि जैव विविधता से संबंधित स्थानीय समुदायों के ज्ञान का लाभ लेना एवं उनका संरक्षण करना। स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटी, जब हम लोकल कम्युनिटी की बात करते हैं, खासकर जैव विविधता के बारे में, तो आपके दिमाग में कौन सा समुदाय आता है? दोस्तों, ये आदिवासियों का समुदाय है, ये जनजातियों का समुदाय है, क्योंकि वही लोग जंगलों में रह रहे हैं। तो वो चूंकि सदियों से वहां रहते आ रहे हैं तो वहां के बारे में उनका जो ज्ञान है वो अद्भुत है। इस वनस्पति का क्या उपयोग होगा, इसको कैसे बचा करके रखा जा सकता है, कैसे इनका संरक्षण किया जाए। भले ही आपको उनका यह जो ज्ञान है बड़ा अव्यवस्थित टाइप का लगे, बड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का लगे, लेकिन उनके पास इसका जबरदस्त अनुभव है, अनुभव जन्य ज्ञान है। तो बकायदे इस अधिनियम में उनको भी प्रेफरेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है कि नहीं, आप देखिए कि उनके ज्ञान का कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, और बकायदे उनके ज्ञान को संरक्षित भी कीजिए, उसको उसे डॉक्यूमेंट भी कीजिए। और इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है उद्देश्य के तहत कि केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर संस्थाओं का गठन करके अधिकांश लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए तीनों लेवल आप देखिए, केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, और फिर स्थानीय स्तर पर भी। आप बकायदे संस्थाएं बनाइए, और ये संस्थाएं किस लिए बनाइए कि ये जो स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं, ये स्थानीय समुदाय के लोगों को हम बकायदे जो जैव विविधता का संरक्षण किया जाना है उसमें शामिल कर सकें। आप देख रहे हैं, और इसको आगे चलकर भी लगातार रिपीट किया जाता रहा है। जो दूसरे संशोधन एक्ट आए हैं या जो दूसरे तरह के भी जो एक्ट आए हैं उनमें भी इस क्लास को डाला गया है कि हमें स्थानीय समुदाय को शामिल करना है। क्योंकि देखिए स्थानीय समुदाय को बिना शामिल किए आप संरक्षण नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि एक तो स्थानीय समुदाय इस पर डिपेंडेंट है, उनकी जो जीविका है वो इन्हीं पर आधारित है। अगर आप इनको बिल्कुल इनसे अलग कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना, वो विरोध में उतर आएंगे, जैसा कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स के समय में हुआ। दूसरा ये है कि ये इसको समाप्त नहीं करना चाहते, ये नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो उनकी जीविका का आधार ही है ना। तो ये क्यों चाहेंगे कि ये वन नष्ट हो जाएं, ये जीव जंतु नष्ट हो जाएं। चलिए कुछ दिनों तक तो वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर वो 10 साल 20 साल के बाद क्या करेंगे? तो वो बड़े संवेदनशील होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये लोग अनपढ़ हैं और इन लोगों को सिस्टम नहीं मालूम है तो ये इसे नष्ट कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स सच में ऐसा है नहीं, वो उनकी रक्षा करना चाहते हैं। और फिर जब आप उनके हाथ में कुछ शक्तियां दे देंगे या उनके हाथ में कुछ दायित्व तो सौंप देंगे बकायदे संगठन बना करके, तो वो अपने आप को बड़े एम्पावर्ड फील करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं नहीं सरकार हमको कह रही है कि तुम इसकी रक्षा करो, और वो सामने रक्षा के लिए आएंगे। और शायद चूंकि उनकी ज्यादा जरूरत है संरक्षण की वहां की स्थानीय समुदायों को, तो ये बहुत अच्छे से काम भी करेंगे। तो इसके जरिए वह समुदाय जो आपके उपायों का विरोधी हो सकता था या हो सकता है वह आपका समर्थक बन जाएगा। तो दोस्तों इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर भारत के किसी भी एक्ट में आपको इस तरह की बात पढ़ने को मिलती है तो ज्यादातर मान करके चलिए कि वह उस एक्ट में शामिल ही होगा, क्योंकि हमारे लिए लोकल कम्युनिटी इस दृष्टि से बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों आज के डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसका जो शेष भाग है, इसके जो मुख्य प्रावधान है, उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट डेली ऑडियो लेक्चर में करूंगा। अब 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें और साथ ही शुभकामनाएं भी। नमस्कार।